ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जनता को दी जाने वाली सेवा में किसी तरह का विलंब और आलटाल नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कर्मचारियों को किया निर्देश। संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विशेष रूप से मनाने का सरकार का निर्णय। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग में 50 सीटों में एमबीबीएस की पढ़ाई होने जा रही है शुरू। और भारत के मणिपुर राज्य स्थित जिरीवाम जिला में हुए हिंसात्मक झड़प में कम से कम 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राज्य से जनता को दी जाने वाली सेवा में किसी भी कारण से विलंब और आलटाल नहीं करने का निर्देश किया। आज 21वें निजामती दिवस के अवसर पर सिंहदरबार में आयोजित मूल समारोह समिति की कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने भ्रष्टाचार करना अक्षम्य अपराध है, इसलिए ऐसा दुष्कर्म में संलग्न नहीं होने का सभी से आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल को सभी तरह से समृद्ध बनाने में हम सब अपनी ओर से योगदान पहुंचाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अभी के सरकार निजामती सेवा विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विधेयक को जल्द पारित करने के लिए विचार विमर्श आगे बढ़ाई जाएगी। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने 40 कर्मचारियों को निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री ओली ने 10 उत्कृष्ट को निजामती सेवा पुरस्कार और 30 लोगों को निजामती सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार की राशि 1,00,000 रूपये है, तो वहीं निजामती सेवा पुरस्कार की राशि 50,000 रूपये है। कार्यक्रम में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि निजामती सेवा जनता का आशा और भरोसा का केंद्र है। मंत्री गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों के क्षमता विकास मार्फत प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह करना आज की आवश्यकता है। नया बनने वाले संघीय निजामती सेवा आयन से कर्मचारी तंत्र में दिख रहे दुविधा हटाकर सेवा प्रवाह प्रभावकारी होने की विश्वास जताते हुए मंत्री गुप्ता ने कहा कि जनता का सबसे नजदीक का स्थानीय और प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करके सेवा प्रवाह और प्रवर्धन के लिए मंत्रालय काम कर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विस्तार सहनशील और न्यायोचित मन के साथ संवाद किया जाए तो नेपाल भारत बीच के समस्या सहज रूप से समाधान किया जा सकता है। आज जल स्रोत विकास संस्था द्वारा प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय का अंतर्राष्ट्रीय जल प्रवाह कानून नेपाल भारत सहकार्य का दृष्टिकोण पुस्तक का विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। सरकार ने संविधान दिवस 2081 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ विशेष रूप से मनाए जाने की बात कही। संविधान सभा से नेपाल की संविधान 2072 आश्विन 3 गते जारी होने की ऐतिहासिक दिन के स्मरणीय और हर्षोल्लास के साथ दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में मूल समारोह समिति की गठन की गई है। बता दें कि मूल समारोह कार्यक्रम को प्रभावकारी व्यवस्थापन के लिए विभिन्न उप समिति भी गठित की गई है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर अपराध, आतंकवाद लगायतों के बहुआयामिक चुनौती को सामना करने के लिए कानून क्रियान्वयन करने वाले निकायों के बीच समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। आज नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित इंटरपोल स्थापना का शताब्दी दिवस के अवसर पर गृहमंत्री लेखक ने कहा कि आपराधिक क्रियाकलापों को संबोधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी सहयोग का विशेष महत्व है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नेवारी सभ्यता समाजवादी व्यवस्था से मिलता है, इसलिए इसे प्रवर्धन किया जाना चाहिए। ललितपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 खोकना में लगे 12 वर्षीय मेला के समापन मंतव्य देते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि नेवा सभ्यता की मौलिकता को कायम करते हुए नेवारी संस्कृति को पर्यटन और आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़े जाना चाहिए। अध्यक्ष प्रचंड ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक विकास सामाजिक सौंदर्यता और संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में मात्र नहीं बल्कि नेवा समुदाय ने देश के राजनीतिक परिवर्तन के लिए भी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह करते आई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन महादेव का पूजा आराधना कर हरितालिका तीज पर्व के व्रत के लिए व्रतालुओं ने आज सुबह गौदान पूर्ण पात्र करके व्रत को समापन किया है। इसी तरह हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त किए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजा आराधना करके मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व कल और आज मनाई जा रही है। इस साल इंद्र यात्रा अर्थात कुमारी यात्रा के लिए आवश्यक इंद्र ध्वजा फहराने वाले लिंगो भक्तपुर से काठमांडू लाया गया है। भक्तपुर की सूर्य विनायक नगर पालिका वार्ड नंबर 10 स्थित चित्तपोल के सामुदायिक वन से नेपाल पंचांग निर्णायक समिति की शुभ समय पर भक्तपुर से लिंगो कल रात काठमांडू लाया गया। ये जानकारी केन्द्रीय मानंधर संघ के सदस्य एवं प्रचार संयोजक के मानंधर ने दी। राप्ती के दांग में स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में MBBS पढ़ाई शुरू होने जा रही है। चिकित्सा सेवा आयोग ने MBBS पढ़ाई संचालन के लिए प्रतिष्ठान को प्रथम वर्ष में 50 सीटों को सुनिश्चित किया है। बता दें कि 50 सीटों में 75% छात्रवृत्ति में नाम निकालने वाले विद्यार्थियों ने MBBS पढ़ सकने की व्यवस्था है। कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत कालीकोट के तिला गुफा 5 खल्लागाड़ में हाइस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं। जुमला से सुर्खेत आ रही हाइस आज दोपहर में दुर्घटना हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए और घायलों में से 5 की अवस्था गंभीर है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट ने दी। काठमांडू में आश्विन के पहली सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन शुरू होने जा रही है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज और रूम टू रीड के संयुक्त आयोजन में आने वाले आश्विन 4 और 5 गते अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन शुरू होने जा रही है। प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में होने जा रही 2 दिनों के सम्मेलन में नेपाल सहित भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, डेनमार्क लगायत के देशों से 25 से अधिक विदेशी सर्जक की सहभागिता रहेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मणिपुर के आईजी के कबीब ने शनिवार को बताया कि एक मजबूत एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसर ग्राउंड पर उतारे गए हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई पेट्रोलिंग जारी है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मियों तैनात हैं। पहाड़ियों और घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। इन जिलों में लंबी दूरी के रॉकेट और ड्रोन दागे गए, उनकी तलाश जारी है। इसके लिए 3 से 5 किलोमीटर के इलाके में सर्चिंग जारी की गई है। आज जिरीबाम में हुई 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर पर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिन्हा के रूप में हुई है। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मेतेई लोगों के बीच गोलाबारी हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता को दी जाने वाली सेवा में किसी तरह का विलंब और आलटाल नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कर्मचारियों को किया निर्देश। संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विशेष रूप से मनाने का सरकार का निर्णय। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग में 50 सीटों में MBBS की पढ़ाई होने जा रही है शुरू। और भारत के मणिपुर राज्य स्थित जिरीबाम जिला में हुए हिंसात्मक झड़प में कम से कम 5 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।